तकरीबन सभी को यह प्रार्थना याद है। लेकिन प्रार्थना के शब्द भले ही याद है, क्या इसका अर्थ भी याद है? याद तो दूर की बात है, कभी अर्थ का ध्यान करते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन? सारी सृष्टि की रचना करने वाला। गुरु ही विष्णु है, विष्णु पालन करने वाला, जो सर्व प्रकार से हमारी रक्षा करता है, हमारी पालना करता है। और गुरु ही महेश्वर है, अर्थात सारे विघ्नों को, बाधाओं को, संकटों को नष्ट करने वाले, हमारी बहिर्मुखता को, बाहर फैले हमारे संसार को नष्ट करने वाले हैं, अंतर जोड़ने वाले हैं। और गुरु ही परम ब्रह्म, परम, परम का अर्थात अर्थ होता है जिससे आगे कुछ भी नहीं, जिससे आगे, जिससे बड़ा, जिसके बाद कुछ भी नहीं है। तो वो परम ब्रह्म, वो परम पद, परम तत्व गुरु ही है। ऐसे उन गुरुदेव को तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो ऐश्वर्ययुक्त हैं। श्री, श्री अर्थात ऐश्वर्य, समस्त शक्तियां, समस्त वैभव, समस्त संपत्ति जिसमें है, ऐसे वो गुरु, उनको हम नमन करते हैं। हुँ? सच में ये प्रार्थना याद है? एक प्रश्न हमारे पास है यहां पर कि मनुखी जामे विच दुख तकलीफां बहुत ज्यादा हैं, इना तो कीवें छुटकारा पाया जाए? इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा दुख हैं, तकलीफें हैं। पंचग्राही से अवतार सिंह जी का प्रश्न है ये कि इनसे छुटकारा कैसे? क्या आप सब लोग मानते हैं कि मनुष्य जीवन में बहुत दुख है? मानते हैं बहुत तकलीफ है, छूटना है इनसे? अभी कल की ही बात है, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे तो कल वापसी में खन्ना रुकते हुए आए, एक सत्संगी परिवार है, उनका 22 साल का लड़का बीएड कर रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, बीएड कर रहा था, तो वहीं पास में गांव में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, साथ में और भी लड़के थे, लड़कियां थी, वो गांव थोड़ा सा एकांत में, रास्ता बिल्कुल सुनसान सा, ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी। तो 17 तारीख को जब वो शाम को स्कूल से निकला, लड़कियां भी थी स्कूटर पे अपनी अपनी, वो भी मोटरसाइकिल पर था, सब लोग जा रहे थे, तो अचानक सामने से देखा एक बहुत तेजी से कार आ रही है। तो देखकर उसके मन में हुआ कि भाई ये कार वाला कहीं गड़बड़ ना करे, तो उसने तेजी से अपनी मोटरसाइकिल लड़कियों से आगे कर ली कि लड़कियां कई बार ध्यान नहीं रख पाती है गाड़ी, एकदम से वो किसी का बैलेंस ना बिगड़ जाए, तो उसने बड़ी तेजी से करके उनके आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा ली। और वो जो कार आ रही थी, ड्राइवर ने नशा किया हुआ था, स्मैक वगैरह लेता था, वो उसमें भी नशे में ही था, पूरी अंधाधुंध रफ्तार से आया और सीधे आकर बाइक, वो लड़का भी उछल गया हवा में और उसकी मोटरसाइकिल भी, और जाने कैसे वो मोटरसाइकिल उछलती हुई सीधे उसका साइलेंसर यहां पर लगा और छाती का यह हिस्सा ही साथ में निकल गया। वो लड़का तकरीबन वहीं पर ही, उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी, सब लोग जो साथी थे उन्होंने फटाफट उसको उठाया, अस्पताल लेकर गए, 2:10 पर यह दुर्घटना हुई, 3 बजे से पहले प्राण पखेरे। सोच सकते हैं आप लोग, 22 साल का लड़का बीएड की ट्रेनिंग कर रहा था, माँ बाप ये सोच रहे थे कि चलो अगले साल कहीं नौकरी लगेगी फिर उसका ब्याह करेंगे, तो कल उनके घर होकर आए, माता कहती है कि सुबह जब उसको तैयार करके भेजा था, क्या पता था कि वो कभी नहीं आएगा, और वो बच्चा कुछ संयोग ऐसा था कि बचपन में ही उसे कुछ ऐसा रोग हुआ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी तो दिमाग पर असर हुआ, तो उसका दिमाग इतना तेज नहीं था, और इस करके मां का लाडला था, हमेशा मां का बहुत लाडला था वो, और पिछले कुछ 2-3 महीनों से ना जाने क्यों उसकी माँ उसकी बहुत चिंता करने लगी थी अचानक, वैसे ही बहुत लाडला था। शिवरात्रि पर अगर आप लोगों को ख्याल हो तो वहीं बाहर खड़े हमारे साथ बहुत देर तक उसकी माता बात करती रही कि इसका कुछ करो, बहुत दुख होता है हमें कि ये बच्चा इतना सीधा साधा है, दुनिया के छल परेब की इस दुनिया में इसका काम नहीं चलता, लोग इसको सिधरा कहते हैं और सिधरा बनाते भी नहीं, तो बहुत बेचारी रो रही थी। तो तकरीबन 2-3 महीनों से उसे ना जाने क्यों इतनी ज्यादा चिंता उस बच्चे की होने लगी थी, क्यों? माँ का प्यारा था, अरे बच्चा तो माँ का अंश होता है, पता लग जाता है, कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। रोज घर में घंटी बजती, मां दौड़ती थी कहीं बेटे का फोन तो नहीं आया। एक अनजाना सा डर उसके अंदर पैदा हो गया था। 2-3 महीने और वो सब एक पल में सामने आ गया। लेकिन ये केवल एक घटना नहीं है, रोज देखते हैं हम लोग। उनके घर जब जा रहे थे, रास्ते में राजपुरा में ही हमारे साथ जो सज्जन हमें छोड़ने के लिए आए थे, उन्हें कुछ काम था तो राजपुरा शहर के अंदर चले गए। वो तो राजपुरा शहर के अंदर हम लोग जब गए तो हमारे पहुंचने के कुछ देर पहले की ही घटना होगी, एक इनोवा कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर वहीं पड़े हुए थे। इनोवा कार की बुरी हालत थी और उन गाड़ियों के साथ में 2 शव पड़े हुए थे। हम लोग पहुंचे तो शव को लपेट रहे थे, वो पुलिस खड़ी थी वहां पर। तो ताजी घटना हुई थी उसी समय, 2 शरीर सामने पड़े हुए। तो ये केवल एक घटना नहीं है, अखबार उठाओ तो ऐसी कितनी घटनाएं भरी पड़ी होती। पर एक बात बताओ, गाड़ियां आप ही चलाते होगी और चलाते समय क्या होता है, कैसे भी आगे निकल जाएं बस, होता है कि नहीं? लाइट की तो कोई परवाह नहीं, साइड में बोर्ड लगा है स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर, हु केयर्स। रोज देखते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई जा रहा है हमारे पास पड़ोस में, लेकिन मन में कभी आता है कि हमने भी जाना है? हमें लगता है हम तो कभी जाएंगे ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, ये संसार जिसको हम दुख कहते हैं वो क्या है? दुख हमारे लिए, दुख की परिभाषा क्या है? शरीर में रोग हो गया, धन का नुकसान हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, परिवार में अशांति हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, इसी को तो दुख कहते हैं ना। इससे छुटकारा नहीं, ये संसार दुख रूप ही है, इससे छुटकारा नहीं है। क्यों? सूरज है तो गर्मी तो साथ होगी, संसार है तो जीवन मृत्यु रोग हानि लाभ लगे ही रहेंगे, इनसे छुटकारा नहीं। लेकिन एक बात है, छूट सकते हैं। संसार दुख रूप है, इसमें कोई शक नहीं, संसार में है तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु होना ही होना है, लेकिन छूट सकते हैं हम। कैसे? यहां पर आने के बहुत पहले की बात है, उस समय हम कॉलेज में ही थे, घर से दूर पढ़ाई करते थे, बहुत दूर, और ऐसा कुछ संयोग बना कि इस शरीर के नाते से जो माता के भाई थे, अभी युवा शरीर ही उनका था, कोई छोटे छोटे बच्चे थे, अचानक एक दुर्घटना में उनका शरीर छूट गया। लेकिन घर वालों ने सोचा कि भाई बच्चा बाहर अकेला रहता है, उसे दुख होगा, उन्होंने नहीं बताया। जब कई महीनों के बाद वापस घर आए और पता लगा तो एक विचार मन में आया, इतने महीने बीत गए, हमें कुछ नहीं पता था इस दुर्घटना के विषय में, कोई दुख नहीं हुआ, आराम से पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज इस पल, जबकि उस व्यक्ति को गए कई महीने बीत गए हैं, क्या दुखी होना चाहिए? और अगर इस पल में वो दुख नहीं है तो उस पल में दुख क्यों? कोई आया गया दुख क्या है? हमारे मन की अवस्था ही तो है, मन की अवस्था ही तो है। नहीं पता था कोई दुख नहीं, पता लग गया तो दुख। उस व्यक्ति के जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि हमारा मन जो है जैसा चाहता है वैसा नहीं हुआ तो दुख, और जैसा चाहता है हो गया तो सुख। लेकिन मन तो एक छलावा है, और इसीलिए सुख दुख लगे ही रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनसे छुटकारा, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, अपने देश में तो एक परंपरा चली आ रही है ज्ञान की, भारत भूमि ऋषियों की है, गुरुओं की है। इस भूमि में बच्चे बच्चे को यह संस्कार दिया जाता है कि जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, जीवन का लक्ष्य है परम सुख परमात्मा, जिसको सीधे सादे शब्दों में कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। कि यह संसार तो बंधन है, इससे मुक्ति, इससे मोक्ष पाकर ही वो परम सुख मिलेगा। लेकिन उस परम सुख का अधिकारी कौन है? हम ये तो कहते हैं कि हम छूटना चाहते हैं, लेकिन छुटकारे का अधिकार कैसे मिलता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सम दुख सुखम वीरम सोमृतत्वाय कल्पते, कि जो पुरुष धीरवान है, जो धीरज रखता है, धैर्य रखता है और सुख दुख को सम समझता है, उस अमृत पद का, परम पद का, मोक्ष पद का अधिकारी तो वही होता है। तो अगर हम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कभी नहीं छूटे। शरीर है तो रोग होना ही है, बुढ़ापा आना ही है, एक ना एक दिन तो इसने जाना ही, तो ये दुख तो रहेगा। दुनिया में व्यापार करते हैं तो कभी लाभ होता है तो कभी हानि होनी ही होनी है। रिश्ते हैं, परिवार है तो कभी बहुत प्यार है तो कभी तकरार होनी ही होनी है। क्यों? दिन है तो रात होनी ही होनी, दुनिया का नियम है। दुनिया में ये नियम है कि दिन के साथ रात है, सुख के साथ दुख है, प्यार के साथ तकरार है। ये दुनिया का नियम है। जब तक दुनिया में है ये नियम रहेगा। हाँ, छूटना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सम दुख सुखम वीरम, सुख और दुख को समान करना होगा। यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने देना हो, मन को बाहर नहीं भागने देना होगा। और इसको सीधे सादे शब्दों में गुरुवाणी कहती है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। ये मन जो विषयों में लगा है, थोड़ी सी हलचल हुई विचलित हो जाता। हमारा मन कहां रहता है? घर की दीवार में एक दरार पड़ गई, हाय हाय। गाड़ी में एक डेंट आ गया, हाय हाय। कपड़ा पुराना हो गया, हाय हाय। बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हाय हाय। बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, उसका काम नहीं चल रहा। हाय हाय, जब तक दुनिया के व्यक्ति, दुनिया के विषय हमारे मन के आधार में, दुख तो रहेगा। सो सुखिया जिस नाम आधार, सुख का साधन है उस परमात्मा के नाम का आधार, और कोई तरीका नहीं। क्यों? सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, वो जो नाम है परमात्मा का, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, बशर्ते कि वो नाम केवल हमारी जिह्वा में फंसा ना रह जाए, बल्कि एक दो जीवो लख होवे, लख होवे लख बीस, लख लख गेड़े आखिए एक नाम जगती। केवल एक जीवा में ना रह जाए वो नाम, लख लख गेड़े आखिए इस शरीर के रोम रोम में वो नाम बस जाए, आती जाती श्वास उसको ही जपती जाए, एक नाम ही हमारा आधार बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बाहर तूफान आ रहा है, खिड़कियां बंद कर लो, क्या समस्या है? और खिड़कियां भी एक ऐसे घर की जिसकी नींव इतनी गहरी है कि कोई तूफान उसको हिला नहीं सकता। हां, ये ध्यान रखना, नाम क्या है अगर ये समझ लोगे तो कभी कभी विचलित नहीं होगे। बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि जी जब तक तो बाहर सारा कुछ ठीक है, पाठ भजन अच्छा चलता है, जो थोड़ी सी हलचल हो जाती है तो पाठ भी नहीं होता। लेकिन अगर हलचल के समय पाठ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि पहले भी कभी नहीं हुआ था, वो केवल एक मन की तसल्ली थी, पाठ नहीं हुआ। अरे नाम की तो इतनी ताकत है। कोई ये तसल्ली देने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। एक दृष्टांत हमें याद आ गया, ये घटना काफी पुरानी है, आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। महाराज जी उस समय कहीं शायद मुक्तिनाथ की यात्रा पर थे, साथ में चार पांच साधु और भी थे, तो रास्ता बर्फीला, बर्फ के पहाड़ हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, बिल्कुल इतनी ठंड और ऊपर से बारिश, तो शरीर बिल्कुल भीगे हुए। चलते चलते वो बर्फीली हवाओं में ये हाल हो गया कि शरीर सुन्न पड़ने लग गया। सारे कहते हैं कि भाई अब तो बुरा हाल है, क्या करें, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा है। तो ये विचार किया कि चलो चाय बनाई जाए, तो वहां पर एक पत्थर की ओट देखी गई, वहां पर चाय बनाने की तैयारी में लग गए, तो और साधु लगे हुए चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं, स्टोव भी नहीं जल रहा, इतनी ठंड में माचिस भी नहीं जल रही है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं। महाराज जी ने सोचा कि चलो तब तक थोड़ा सा बैठकर ध्यान करते हैं, लेकिन शरीर इतना ठंड से बिल्कुल जकड़ा हुआ, बैठा भी नहीं जा रहा, तो पत्थर का सहारा लेकर लेट से गए और लेट कर ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। शरीर इतना अकड़ रहा है कि अंदर प्राण जा ही नहीं रहे, मन जा ही नहीं रहा। तो सोचा चलो प्राणायाम करें, श्वास भरने की कोशिश कर रहे हैं अंदर गहरे, लेकिन श्वास अंदर तक जा ही नहीं रहा, शरीर बिल्कुल जैसे जम सा गया है, क्या करें। तो मन में फुरना हुआ कि भाई शरीर इतना ठंडा हो गया है, इसको अग्नि चाहिए। तो अग्नि का बीज मंत्र होता है रम, रम ये अग्नि बीज है। तो उन्होंने कहा चलो अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हैं, शरीर में अग्नि पैदा हो। तो पूरी एकाग्रता से मन को अपने सुषुम्ना के अंदर ले जाकर अग्नि का जो केंद्र है नाभिकुंड के केंद्र में, वहां मणिपुर चक्र में जाकर अपने मन को वहां टिकाकर वहां से मंत्र का जाप किया राम। जब एक बार जाप किया तो उठकर बैठ गए, दोबारा जाप किया तो शरीर जैसे खुल गया, दो बार और जाप किया तो ठंडा पानी मांग कर पीना पड़ा। जहां अभी ठंड से शरीर अकड़ा हुआ था कि कुछ कर नहीं पा रहा, अग्नि बीज के उच्चारण से शरीर में इतनी अग्नि जागृत हो गई, वो भी 3-4 बार के उच्चारण से ही ज्यादा नहीं, कि ठंडा ठंडा पानी मांग कर पीना पड़ा। कोई कपोल कल्पना नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं है, साथ में 3-4 साधु और भी थे, वहां पर प्रत्यक्ष घटना है महाराज जी के जीवन की। तो अगर सच में सोच के देखो कि एक अग्नि के बीज का उच्चारण करने पर शरीर में इतना कुछ हो गया, और जो ब्रह्म का बीज है, गुरु का नाम है, उसका उच्चारण करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होता कि अभी उतनी गहराई में हम जा ही नहीं सके। कीर्तम नाम कथे तेरी जिह्वा, सत नाम तेरा परापुरा। ये जो जीव से उच्चारण होता है ये तो कृत्रिम है, नकली है, नहीं बात बनती इससे। क्यों? नुक्ता बड़ा सीधा सरल सा है, अगर समझना चाहते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है, शरीर माध्यम खल धर्म साधना, समस्त साधन जो हमारे जितने भी धर्म हैं मनुष्य जीवन के, उसका आधार, उसका साधन तो ये शरीर ही है ना। क्यों? यही शरीर है, एक दिन आता है कि कहते हैं ले जाओ जला दो। तो इस शरीर की विशेषता नहीं है, विशेषता है इस शरीर में रहने वाले परमात्मा की। ये मनुष्य शरीर है जिसके अंदर परमात्मा पूरे का पूरा खुद आकर बैठ गया। उपनिषदों में आता है, भगवान कहते हैं कि ये मूर्धा से मूर्धा को फोड़कर वो शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ, इसी शरीर के अंदर ये कानों से एक सलाई डाली जाए और एक सलाई यहां मस्तक के केंद्र से, दोनों आंखों के बीच से, तो वो दोनों सलाइयां जहां आपस में काटती हैं मस्तक के बिल्कुल केंद्र में, वो जो जगह है उसको कहते हैं दशम द्वार। सूक्ष्म केंद्र है, चीर फाड़ के नहीं दिखने वाला, जैसे बिजली दिखती नहीं है ना, लेकिन काम तो पूरा करती है, तो वैसे ही वो अंदर वो एक केंद्र है, वो जो सूक्ष्म द्वार है उसके अंदर बैठा है परमात्मा पूरे का पूरा। सारी साधनाओं का, ध्यान का लक्ष्य इतना ही है कि अपने प्राणों को, अपने मन को, जो अभी बाहर दुनिया में भटक रहा है, आंखें बाहर भागती हैं, कान बाहर, सारे इंद्रिय क्षेत्रों से सुरत बाहर जो भाग रही है, उसको अंतर्मुखी करके सुषुम्ना में गति दें। करते करते जब पूरी गति, पूरा वेग बन गया तो दशम द्वार में प्रवेश मिलता है। और जब एक बार वहां प्रवेश हो गया तो वहां बैठा है परमात्मा। एक बार, बस एक बार उससे मेल हो गया तो यह सारा जीवन बदल जाता है। ये मन ही नहीं, ये तन भी, ये शरीर भी बदल जाता है। हो सकता है, बिल्कुल संभव है। और उस परिस्थिति में ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो, प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। शास्त्र बताते हैं कि उस अवस्था में, कि जब पूरे रोम रोम में वो नाम की चिंगारी इस तरह फैल गई कि ये शरीर ही नाममय हो गया, योगमय हो गया, अग्निमय, तो उस अवस्था में ना तस्य रोगो, शरीर में रोग नहीं होते, मतलब ही नहीं है रोग का कोई, ना जरा बुढ़ापा नहीं आता, कमजोरी नहीं होती, और इतना ही नहीं ना मृत्यु। अरे मृत्यु होती क्यों नहीं, जब करते करते शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई, करते करते शरीर में जान ही नहीं रही, वो प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं रही, शरीर छूट जाता है। एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है वो भी क्या है, शरीर नकारा हो गया, अब उसमें रह ही नहीं सकते, तो कहानी खत्म। और सामान्य जो मृत्यु होती है रोगों के कारण, बुढ़ापे के कारण, करते 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 शरीर में ताकत ही नहीं है प्राणों को रोक के रखने की, मृत्यु हो गई। लेकिन जब रोम रोम में वो परमात्मा का नाम गूंज रहा है, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति गति कर रही है, तो रोग कैसे, बुढ़ापा कैसे, मृत्यु कैसे संभव नहीं। शरीर की अगर बात करो तो सोच के देखो, 15 सालों से तो हम ही देख रहे हैं, महाराज जी बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने उनका शरीर, शरीर में रोग, उनके शरीर को तो पता भी नहीं रोग होता क्या है। बुढ़ापा, जिस आयु में शरीर की, जिस आयु में बड़े बड़े संत महात्मा जो बद्रीनाथ रहने वाले, गंगोत्री रहने वाले, वो भी नीचे आ जाते हैं और वो वापस वहां जाकर बैठे, क्यों? शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि वो रह सकते हैं वहां पर। महाराज जी कई बार आपको याद ही हो, कई बार बात होती तो कहते थे इन्हें आज भाई रेस लाके देख लेने, जो लोग ने कहना कि मारे तुझे कुछ खाने नहीं है क्या, तुझे कुछ खा लिया करो, खाने का तो नहीं है क्या, शरीर को ताकत ऊर्जा मिले इधर ही करते हैं ना, तो तुसी ताकत ही गल करते, आओ ना रेस लाके देख लो। तो वो संभव है, और ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार वाली बात है, उन्होंने तो सारी साधनाएं हमें खोल खोल के बताई, हर व्यक्ति को बताई है। अब बात यह है कि हम कितना करते हैं, और करने का नुक्ता एक सीधा सा, बड़ा सीधा सा नुक्ता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात है नहीं। मन में यह विश्वास पक्का हो कि वो मेरे गुरु का नाम जो है उसमें और नामी परमात्मा में कोई अंतर नहीं, वही वही नाम ही नामी है, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे शरीर के अंदर है तो बाहर भटकने की क्या जरूरत है, अंदर की यात्रा करो। लेकिन हो नहीं पाती, क्यों? असीं तां रोज पाठ करते हैं जी, कितना करते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा लाने, है ना, पाठ तो करते हैं, नितनेम पूरा रच के करते, जेडे करते उन्हां दी गल करते, बाकी दी गल तो छड़ दो, तो जेडे करते भी हैं तरीका की है, असीं रोज पाठ तो असीं रच के करते हैं, रोज जी घंटा लाने हैं असीं। सोच के देखो, घर गृहस्थी के काम, गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या होता है, आम लोग ही कहना वैसे गृहस्थी बंदे है, गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या होता है, शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थ जीवन का लक्ष्य इतना ही है कि समाज को एक उत्तम संतान दी जाए, यानी कि बच्चे को पढ़ा लिखा कर पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बस इतना आपका फर्ज था। और हम क्या करते हैं, बच्चों के बच्चे भी हो जाएं, उनके बच्चे भी हो जाएं, जी की करिए, वेल नहीं मिलती जी, वेल तो जदों काल दी लाठी पैंदी है ना, सारियां नूं मिल जाती है। लक्ष्य नहीं है लक्ष्य, पाठ करते हैं लेकिन लक्ष्य परमात्मा नहीं है, और इसीलिए उस पाठ का फल नहीं होता। मंदिर जाने हैं, गुरुद्वारे जाने हैं, डेरे जाने हैं, मत्था टेकते हैं, मंगते की हैं, दुनिया भी मंगा, बुराई कोई नहीं मांगो, लेकिन लेकिन उस मांग को अपना लक्ष्य तो मत बनाओ। मन में ये संकल्प तो पक्का हो कि मेरा लक्ष्य परमात्मा है। ठीक है, अभी शरीर में रोग है तो मांगो कि प्रभु रोग दूर करो कि मैं और डट के साधना कर सकूं। घर की जिम्मेवारी है, घर में पैसे की तंगी है, डट के मेहनत करो, पैसे कमाओ, लेकिन ये मांगो कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे से मेहनत करूं, घर की पालना कर सकूं, सेवा कर सकूं और ये सारा करके तेरा नाम जप सकूं। जदों कष्ट आया उदों तो भज के गए जी, कृपा करो कृपा करो। जदों सोखे हो गए दुनिया भी नजर ना आई, चल कोई ना हुण तां कोई नहीं, महाराज जी दी बहुत कृपा हैगी। अरे भगवान की गुरु की कृपा इसे नहीं कहते, इसे कृपा नहीं कहते। ये एक बहुत गंभीर बात है। दुनिया में आम क्या चलता है, जो ये दुख की बात भी हो रही है, इसी दुख के प्रकरण को अगर स्पष्ट करें, बहुत लोग तकरीबन सभी लोग ये बात करते हैं, असीता जी इन्ना पाठ भजन करते हैं फिर भी साढ़े तो दुख आई जाते हैं, ओ देखो फलाना सारे गलत काम करी जाता कि ना सुखी हैगा। लेकिन यहां सुख और दुख की कसौटी क्या है? सुख का मतलब कि उसके पास बहुत पैसा है। अब ये एक कसौटी रख लो, जब हमारी दृष्टि में सुख का मतलब पैसा है, परमात्मा कैसे दिखाई देगा? नहीं दिख सकता। मिलना तो बहुत दूर की बात है, दिख ही नहीं सकता। मेहनत करने को बुरा नहीं कहते, पैसे कमाने को बुरा नहीं कहते, लेकिन अगर हमने पैसे को सुख माना हुआ है तो कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? वो तो जड़ है। पैसा तो जड़ है, जड़ पदार्थ की गुलामी चेतन कैसे कर सकता है? संभव नहीं है। सुख तो चैतन्य में है, ना तो वो पैसा आपकी भूख मिटाएगा, ना आपके रोग दूर करेगा। अगर पैसे में सुख होता तो धनी लोग सुखी होते, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तो सारी दुनिया आती है, सबके दुखड़े हुए। तो एक बात मन में बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ बांध कर बिठा दें, सुख का मतलब पैसा नहीं है। तो क्या परिवार है सुख? सबको पता है काहे का सुख परिवार में। जब तक बच्चा हमारी बात मानता है बहुत बढ़िया, नहीं मानता है तो हाय हाय। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, एको हम बहुश्याम। सृष्टि का जो मूल है, परमात्मा का संकल्प है कि प्रत्येक जीव ने उस परमात्मा रूप में विकसित होना है। तो जब प्रत्येक जीव ने उस पद पर पहुंचना है तो गुलामी कैसे करेगा वो? कि मैंने कहा और तुम मानो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे जो चेतना हमारे अंदर है वही तो हमारे बच्चे के अंदर भी है भाई, वो कैसे हमारी बात मानेगा? संभव नहीं है, ऐसा ही करो हो ही नहीं सकता। और हम सारी जिंदगी लगे रहते हैं। हमें तो कई बार हंसी आती है जब माँ बाप आकर शिकायत करते हैं अपने बच्चों की, ना सारा टाइम खेली जाता है, कितना मर्जी कह लो सुनवा ही नहीं आता। तो हमें इस बात पे हंसी आती है कि आप कह रहे हो कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा, आपने कब सुनी? एक ही बात आप कहते जा रहे हो, एक ही काम वो करता जा रहा है, दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों बचपना कर रहे हो, सयानापन तो ये नहीं है ना। या अगर और सीधे शब्दों में हम कहें तो हम कहते हैं दीवार से क्यों माथा फोड़ रहे हो? किसी को समझाना असंभव सी बात है। अगर ये संभव होता तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न, योगैश्वर्य संपन्न दुर्योधन को समझा नहीं सके, वो तो कहता उल्टा इनको बंदी बना के। सोच के देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा नहीं सके, हमारी आपकी क्या बिसात कि हम किसी को समझा लेंगे। इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। तो तरीका क्या है? बहुत विस्तार में ना जाते हुए छोटे छोटे सूत्र पकड़ लेते हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं करें, छोटे छोटे सूत्र। नंबर एक बात, जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, सुख आनंद परमात्मा है, उसके बिना और कहीं सुख नहीं। नंबर दो बात, ये दुनिया के धन पदार्थ, परिवार, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे, लेन देन का व्यापार है, क्या पता पिछले जन्म में जो हमारा पुत्र रहा हो वो ही जन्म में शत्रु बन जाए, और जो पिछले जन्म में शत्रु रहा हो इस जन्म में पुत्र बन जाए। तो ये सब तो छलावा है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा भाई, अरे काहे का मेरा भाई, कुछ नहीं पता। तो ये दुनिया के पदार्थ और दुनिया के व्यक्ति सुख नहीं दे सकते। सुख एकमात्र परमात्मा है, वही मेरा लक्ष्य है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, वो सुख स्वरूप परमात्मा मेरे ही शरीर के अंदर है, कहीं दूर नहीं है। तो असली यात्रा तो शरीर के अंदर ही करनी है। जब तक हमारा लक्ष्य बाहर है, अंदर कैसे जाओगे? मुख अगर पूरब की ओर है, अंदर कैसे जाओगे? पश्चिम में कैसे आओगे? तो ये नहीं कहते दुनिया के काम छोड़ दो, छोड़ भी नहीं सकते पहली बार, तो करो, लेकिन लक्ष्य, और लक्ष्य की कसौटी क्या होगी? लक्ष्य हमारा परमात्मा है, लक्ष्य हमारा परम सुख है, इसकी कसौटी क्या बनेगी? कि हम दुनिया के काम अच्छी तरह से करेंगे, फटाफट करेंगे, और करके जैसे ही फुर्सत मिलती है परमात्मा की ओर मुख करेंगे। चल कोई ना देख ले वांगे अजय, नहीं, काम को जो टालने की प्रवृत्ति है, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमने तो जाना नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, तो इसलिए नहीं, शरीर का क्या भरोसा कब छूट जाए। तो फटाफट अपने काम निपटाओ और भजन पाठ में लग जाओ। तो ये कसौटी बन जाएगी कि जब भी हमारे पास खाली टाइम होता है तो हम क्या करते हैं। और नंबर तीसरी, आंखें बंद करो तो कुछ दिखता है अंदर क्या? कान बंद करो कुछ सुनता है क्या अंदर? नहीं ना। कहने का मतलब क्या है, अंदर की यात्रा अपने आप नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक मैं हूं सूरत बाहर है। तो साधना की शुरुआत ही होती है गुरु की शरण में आके। तो मन में ये स्पष्ट हो कि गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु का सच्चा स्वरूप तो उसका नाम ही है। किसी हद में शरीर को गुरु थोड़ी ना कहते हैं, लेकिन वो द्वार तो शरीर ही बनता है ना। और जब तक हमारी देह बुद्धि है, जब तक हम शरीरों की पहचान से अपना काम चलाते हैं, तब तक, बल्कि उसके बाद भी शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि सारी दुनिया में अद्वैत भाव हो जाए सब में, लेकिन ना द्वैतम गुरु ना सहे, गुरु के साथ में कि नहीं मैं और गुरु एक हूं, वो भाव तो फिर भी नहीं, गुरु तो गुरु ही रहते हैं। तो तीसरी बात, गुरु, पंजाबी तो आम ही अपने जड़ी परंपरा चलती पंजाब के बीच, गुरुमुख बन चुके, गली चलती सिद्धि जी, साधक का मतलब कि परमार्थी का मतलब कि गुरुमुख हैगा। इतने दो ही गल्ला चलती है, जाता मनमुख है जा गुरुमुख, मनमुख तो दुनियाई व्यक्ति हो गया, गुरुमुख बन गया परमात्मा, मन हो गया तब गुरुमुख बन जाओ। तो तीन बातें, लक्ष्य परमात्मा, नंबर दो जितना भी समय मिलता है जो साधन अभ्यास उसको लेकर शरीर के अंदर यात्रा करते जाएं, और नंबर तीन ये पता होना चाहिए कि गुरु के बिना नहीं, बल्कि नंबर तीन को नंबर दो पे कहें तो ज्यादा ठीक है, गुरु के बिना तो साधना भी नहीं। क्रियाओं को साधना थोड़ी ना कहते हैं, मैं कर लूंगा, मैं ये साधना करूंगा, मैं ये करूंगा, अरे मैं है तो साधना काहे की तो नहीं। और मैं की कसौटी फिर कहते हैं वही बनती है। जैसे ही समय मिलता है तो गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति एक दौड़ हो जाए अंदर, एक खींच हो जाए अंदर कि दुनिया के काम कैसे फ्री हो और कैसे हम सत्संग करें, कैसे साधना करें, कैसे गुरु की सेवा करें। तो अगर ये तीन चीजें हो गई तो छुटकारा हो जाएगा। बातें तो सीधी सी हैं, हिम्मत आपकी कि हम कितना कर सकते। हमें तो कल बहुत तकरीबन वो चिंतन तो चलता ही है, और जब कोई ऐसी घटना होती है तब तो और मन में हो जाता है कि बताओ शरीर का क्या भरोसा कब छूट जाएगा। और जैसे ही शरीर गया दुनिया के सारे धन पदार्थ व्यक्ति संबंध खत्म, अब नया जीवन नई यात्रा। तो जो सारा खत्म होने वाला है उसके लिए अपने जीवन को कैसे खत्म कर दें? तो लगता है कि नहीं, कैसे कैसे इस पल को जाने दें, कैसे इसको दुनिया में खो जाने दें, नहीं एक भी पल छूट ना जाए, एक पल के लिए भी सुरत टूट ना जाए। तो भाई यही बात बार बार कहेंगे, संसार तो दुखरूप है, अगर इससे छुटकारा चाहिए तो आधार बनाओ नाम को और चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा।